चारों तरफ तबाही का मंजर था। भीषण गर्मी और आग फैली हुई थी। जमीन पर लावा बह रहा था। उसके बीच रास्ता बनाते हुए आकांक्षा दौड़ी चली जा रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी, कोई है? जानवी, दादू, त्रिशान, क्या कोई है जो मेरी हेल्प करेगा? आकांक्षा को दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। पता नहीं अचानक से सब कहाँ गायब हो गए। रिवांश, अब तो वो भी मेरे पास कभी वापस नहीं आ पाएगा। मेरे अपने कहाँ गए सब? मैं यहाँ अकेली पड़ गई हूँ। आकांक्षा थककर एक जगह पर बैठ गई। इन सब के बीच आकांक्षा की आंख खुली। हर बार की तरह उसे ये उलझन नहीं थी कि वो सपना था या हकीकत। उसने खुद को संभाला और सर पकड़कर कहा, राजपुरोहित जी ने कहा था कि मैं फ्यूचर की इवेंट्स देख सकती हूँ, लेकिन ये सब क्या था? इस बार तो कुछ समझ नहीं आया। मैं अकेली क्यों थी? इस बार मेरे साथ कोई नहीं था, और वो कितनी अजीब जगह थी। पहले इन सुपर पावर्स के साथ अच्छा महसूस होता था, लेकिन अब तो ये बोझ सा महसूस कराने लगती हैं। काश मैं भी औरों की तरह नॉर्मल इंसान होती तो दुनिया बचाने का बोझ मेरे इन नाजुक कंधों पर नहीं होता। आकांक्षा खुद से बातें कर रही थी कि तभी घड़ी का अलार्म बजा, जो कि सुबह के 6 बजने का संकेत दे रहा था। लो, दुनिया बचाने का बोझ कम था क्या, जो अब ये कॉलेज का बोझ भी आ गया। जानवी के मम्मी पापा आ गए होंगे क्या? उन्हें बोलती हूँ कि उस लड़की को मेरे घर पर ही सेटल कर दो, कम से कम अकेलापन तो नहीं महसूस होगा। आकांक्षा उबासी लेती हुई उठी और बाथरूम की तरफ चली गई। वो कुछ देर बाद में बाहर आई तो घर में सन्नाटा था। राजवीर जी मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर गए हुए थे। आकांक्षा खुद को रिलैक्स करने के लिए घर के बगीचे में गई तो वहाँ राजपुरोहित जी ध्यान मुद्रा में बैठे थे। काफ़ी देर कर दी तुमने आने में, राजपुरोहित जी ने बंद आंखों से कहा। आकांक्षा उनके पास आई और बोली, मुझे लगा आप ध्यान लगा रहे हो। हम ध्यान ही लगा रहे थे, लेकिन साथ में तुम्हारा भी इंतज़ार कर रहे थे। हमने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हें अपनी शक्तियों को जागृत करने की आवश्यकता है। वक्त ज़्यादा नहीं है आकांक्षा, तुम्हें भी सुबह जल्दी उठकर ध्यान लगाना चाहिए। राजपुरोहित जी के कहने पर आकांक्षा उनके पास ध्यान मुद्रा में बैठ गई और बोली, मैंने ध्यान केंद्रित करना सीख लिया है। मुझे भी समझ आ गया है कि मुझे फ्यूचर के कुछ मोमेंट्स दिखाई देते हैं, लेकिन मैं अभी भी अपनी शक्तियों को नहीं पहचान पा रही हूँ। जो भविष्य की घटनाएं तुम्हें नींद में दिखाई देती हैं, उन्हें तुम किसी भी वक्त देख सकती हो, अगर तुम चाहो तो। पहले ये करना सीख लो, फिर हम तुम्हें कुछ और ध्यान मुद्राएं बताएंगे जिनके जरिए तुम अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकाल सकती हो। राजपुरोहित जी की बात सुनकर आकांक्षा हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। उसने कुछ देर सोचा और कहा, लेकिन ऐसा हुआ तो मैं मर जाऊंगी ना? नहीं, तुम जीवित अवस्था में ही ये करना सीखोगे। जिस हिसाब से तुमने बताया कि तुम भूतकाल में हो चुकी घटनाओं को स्वप्न के जरिए देख रही हो, इसका मतलब यही है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम्हें उन सभी घटनाओं में जाना होगा, राजपुरोहित जी ने जवाब दिया। राजपुरोहित जी की बातें आकांक्षा के सामने एक अलग ही उलझन पैदा कर रही थी। धीरे धीरे उसे अपने सपनों का मतलब भी समझ आ गया था। मैं वहां जाकर क्या करूंगी? राजपुरोहित जी, तुम वहां जाकर वो सब होने से रोकोगे जिसकी वजह से ये दुनिया तबाह हो सकती है। उन घटनाओं में तुम्हारा होना ये दर्शाता है कि तुम्हें उन सभी घटनाओं को जाकर रोकना होगा जहां पर तुम मौजूद थे। तुम्हारा शरीर उस जगह पर उपस्थित नहीं हो सकता, लेकिन आत्मा वो तो समय यात्रा से भी परे हैं। समय यात्रा से आपका मतलब टाइम ट्रैवल से है क्या राजपुरोहित जी? लेकिन ऐसी अभी तक कोई मशीन नहीं बनी। अगर मेरी आत्मा टाइम ट्रैवल करेगी तो उसे भी वहां पहुंचने के लिए किसी मशीन की जरूरत पड़ेगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज आप सब कुछ क्लियर करेंगे? आकांक्षा ने हैरानी से पूछा। राजपुरोहित जी ने जवाब में कहा, बस वही तो हम तुम्हें कहना चाहते हैं कि तुम अपना ध्यान केंद्रित करके अपनी शक्तियों को जागृत करो। जिस दिन तुम अपने शरीर से आत्मा को बाहर निकाल पाओगी, उसके बाद तुम्हें ध्यान करते समय वो सब सोचना होगा जहां तुम्हें पहुंचना है। फिर तुम्हारी आत्मा खुद बखुद उसी जगह पर पहुंच जाएगी। वाओ, इट्स मिरेकल, मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन राजपुरोहित जी, रिवांश की पूजा से पहले मेरा वहां होना तो समझ आता है, लेकिन रिवांश के आने से पहले मैं महल में क्या कर रही थी? मेरा वहां क्या काम जो मैंने खुद को वहां देखा? आकांक्षा के मन में एक के बाद एक नए सवाल उठ रहे थे। अब ये तो तुम्हें ही पता लगाना होगा। कल सुबह के वक्त, हमारा मतलब सुबह 3 बजे उठकर इस प्रक्रिया को करने की कोशिश करना। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन जल्द ही सीख जाओगे। जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं कई सालों तक प्रैक्टिस करके भी ये सब पाऊंगी, आकांक्षा ने हंसते हुए कहा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कहते हैं मन के हारे हार हैं मन के जीते जीत। अगर तुम पहले ही हार मानकर बैठ जाओगी तो कभी नहीं हो पाएगा। बस मन में एक जुनून रखो कि मुझे करना है। क्या पता तुम ये एक दिन में ही करना सीख जाओ। राजपुरोहित जी के मोटिवेट करने पर आकांक्षा एक्साइटेड हो गई। वो उसी वक्त ध्यान लगाने की कोशिश करने लगी। राजपुरोहित जी उसे सब कुछ सिखाने में उसका पूरा साथ दे रहे थे। अलीजा और त्रिशान को घर पर आए लगभग 3 घंटे हो चुके थे। वापस आते ही वो दोनों सोने चले गए। सुबह के 8 बज रहे थे और अलीजा जाग चुकी थी। जानवी और त्रिशान अभी तक सो रहे थे। उठते ही उसे कॉफी पीने की आदत थी, इसलिए वो किचन में जाने की तरफ की मुड़ी। तभी उसकी नजर रात को बनाए गए लव पोशन वाली बोतल पर पड़ी। इसे तो मैं भूल ही गई हूँ, ऐसा करती हूँ इसे चाय में मिला देती हूँ। त्रिशांत तो चाय पीता नहीं है तो उसे डाउट भी नहीं होगा, लेकिन अगर जानवी वो भी चाय नहीं पीती होगी तो मेरा बनाया लव पोशन बर्बाद हो जाएगा। अलीजा ने कुछ देर सोचा और फिर बाहर आ गई। बाहर आकर उसने त्रिशांत को जगाते हुए कहा, त्रिशांत उठो, सुबह के 8 से ऊपर का वक्त हो गया है, लेकिन तुम हो कि अभी तक सो रहे हो। तुम्हारे दादू यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सुबह लेट तक सोते रहो। अलीजा की आवाज सुनकर त्रिशांत हड़बड़ाकर उठा, मेरी कॉफी कहाँ है? तुम्हें पता है ना उसके बिना मेरी आंख नहीं खुलती, त्रिशांत ने आंख मसलते हुए कहा। अलीजा, मैंने तुम्हें यही पूछने के लिए जगाया था, तुम तो कॉफी पी लोगे, लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड, उसके लिए भी कॉफी बनानी है क्या? त्रिशांत उसकी बात का कुछ जवाब देता उससे पहले पीछे से जानवी ने आकर कहा, जी नहीं, मैं कॉफी नहीं चाय पीती हूँ। उसकी आवाज सुनकर अलीजा उसकी तरफ मुड़ी और कहा, अरे तुम उठ भी गई, मुझे बता दिया होता मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे उठे हुए तो काफी टाइम हो गया, मैं तो चाय पीकर बाहर वॉक भी कर आ गई। मुझे लेट सोने की आदत नहीं है और ना ही मुझे लेट उठना पसंद है, जानवी ने त्रिशांत की तरफ देखकर कहा। उसकी बात सुनकर त्रिशांत हड़बड़ाकर उठा और बोला, मैं भी जल्दी उठता हूँ, तुम्हें पता है ना हम लोग तो सुबह सुबह मेडिटेशन भी करते हैं, बस आज ही लेट हो गई। त्रिशांत वहां से उठा और किचन में खुद की कॉफी बनाने चला गया। अलीजा जानवी की तरफ देख रही थी जो कि अपने लंबे बालों को रबर बैंड से बांधने की कोशिश कर रही थी। ऐसे ही पड़े रहने दो ना, अच्छे लगते हैं। अलीजा के कहते ही जानवी की नजर उसके बालों पर पड़ी जो कि उतने ही लंबे थे जितनी उसकी खुद की लंबाई थी। डोंट टेल मी कि तुमने अपने चेहरे की तरह अपने बाल भी जादू से बढ़ाए हैं, जानवी ने पूछा। नहीं, मैं 120 साल की हूँ तो उस हिसाब से मेरे बाल तो और भी लंबे होने चाहिए। मैं अपना जादू दूसरों की भलाई के लिए करती हूँ, ना कि खुद की ब्यूटी मेंटेन करने के लिए, अलीजा ने जवाब देते हुए कहा।
झूठी कहीं की, अगर ऐसा है तो तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो? और अगर तुमने खुद को मेंटेन नहीं किया होता तो 120 सालों में तुम्हारे सारे दांत और बाल झड़ गए होते। जाह्नवी की बात सुनकर अलीजा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने उसी अंदाज में जवाब देते हुए कहा, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी उम्र को भी यहीं पर रोक सकती हूँ, फिर तुम चाहो तो पूरी जिंदगी ऐसे ही जवान और खूबसूरत रहना। और वो कैसे? जाह्नवी ने पूछा। अरे बहुत आसान है, मैंने एक इस तरह का पोषण डमा रखा है जिसे पीने के बाद कोई भी जवान और खूबसूरत हो सकता है, तुम्हें चाहिए? अलीजा को लगा कि जाह्नवी की तरफ से हाँ ही होगा और वो इसी तरह उसे लव पोषण पिला देगी। नहीं, मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मेरे डैड का मैसेज आया था कि वो यहाँ पहुँच चुके हैं, कहकर जाह्नवी बिना त्रिशांत से मिले वहाँ से चली गई। सोचा नहीं था कि मेरा प्लान फेल हो जाएगा, पता नहीं ये लड़की कब मेरी बातों में आएगी और कब मैं इसे वो पोषण पिला पाऊंगी, अलीजा ने सोचा और वापस आकर अपने काम पर लग गई।